ओम शांति। स्वर्ग लोक में बड़ी धूमधाम चालू थी क्योंकि विष्णु जी थे, उनकी शादी थी। विष्णु जी की शादी, तो चारों तरफ निमंत्रण जा चुके थे, इनविटेशन कार्ड्स, और सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। और जो वधू थी लक्ष्मी, वो अपने तो मायके में थी, तो बारात वहां जाने वाली थी, तो सबको बुलाया गया था। और उसमें गणेश जी को भी निमंत्रण दिया गया था, परंतु जैसे ही गणेश जी को निमंत्रण मिलता है, सभी देवताओं को आपत्ति होती है, अपने आपत्ति जताते हैं कि ये गणेश पहले तो दिखने में इतना ठीक नहीं है, हम इतने हैंडसम, और ससुराल वाले क्या कहेंगे, पहले तो मुंह इतना बड़ा है, दिखने में ठीक नहीं है, पैर तो क्या कहे, इतने बड़े बड़े पैर, इतना बड़ा पेट, और खाता इतना ज्यादा है, तो हमारा सम्मान का प्रश्न है। तो सारे देवता विष्णु जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि इसको मना कर दो आने में, बारात में ये नहीं आएगा। विष्णु कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, उसको तो आना ही पड़ेगा। देवता है कहते हैं नहीं, इसको आप कैसे भी करके रोक दो। तो विष्णु जी कहते हैं गणेश जी को कि भाई तुम ना स्वर्ग को संभालो, हम लोग बारात में जा रहे हैं। विष्णु, वो लक्ष्मी तो कहीं और रहती है, कुंडनपुर दिखाया है शास्त्रों में, तो वो उसका मायका है। तो गणेश जी थोड़ा उदास हो जाते हैं, परंतु ऐसे मौके पे जो मनुष्य सृष्टि का प्रथम पत्रकार है, फर्स्ट स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट नारद मुनि, ऐसी खबरें उसके पेट में कभी नहीं रहती है। वो तुरंत पहुंच जाता है गणेश के पास ये बताने के लिए कि तुम्हें क्यों नहीं लेके गए। और वो सारी बात उसको बता देता है। और ये भी बताता है युक्ति क्या है, अब तुमको क्या करना है। वो कहता है तुम्हारा जो वाहन है वो चूहा है, सभी चूहों का वो राजा है मूषक। तो तुम एक काम करो, जहां से बारात जाने वाली है ना, सबकी देवताओं की, रथ हाथी घोड़े, वो जो रास्ता है अपने सारे चूहों को दौड़ाओ, और नीचे से सारा रास्ता कुरुदने को कह दो, ताकि वो रास्ते में जैसे ही रथ बिताए नीचे गिर जाएगा धरती पर। तो सारे चूहे जाते हैं और अपना काम करके आ जाते हैं। और जैसे ही बारात जाती है तो घोड़े हाथी रथ जैसे रास्ते से जाने लगते, सब नीचे गिरने लगते और धरती पे जाके धस जाते हैं। विष्णु जी का वाहन भी धस जाता है रथ। तो वहां एक किसान होता है, वो देखता है, वो कहता है क्या मैं आपकी मदद करूं। वो बहुत निकालने की कोशिश करते हैं, परंतु निकलता नहीं है, कोई भी रथविद कुछ नहीं निकलता है। तो वो किसान आता है, वो कहता है मैं निकाल के देता हूं, और वो कहता है जय श्री गणेश। और सारे रथों को जो चक्के धस गए थे सबको बाहर निकाल देता है। तो विष्णु और बाकी देवता कहते तुमने ये काम कैसे कर दिया। वो कहता इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है, मैंने गणेश जी का नाम लिया क्योंकि वो प्रथमेश है, क्योंकि हर कार्य की शुरुआत में उनका ही उनकी आराधना की जाती है, और वो विघ्न विनाशक है, इसके लिए। तो सब देवता है बड़े लज्जित हो जाते हैं और गणेश जी को क्या करते हैं, माफी मांगते हैं। तो गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। गणेश अर्थात किस रूप में उसकी उपासना होती है, विघ्नहर्ता है, संकटों का शमन करने वाला है, वो ऑब्स्टेकल को डिस्ट्रॉय करने वाला है, इस तरह से गायन होता है। तो कल की जो अव्यक्त वाणी चली थी, उसमें जो पार्टियों से मुलाकात थी, उसकी आज हम चर्चा करेंगे, और मेन मुरली जो है वो बाद में। तो सबसे पहली पार्टी थी महाराष्ट्र की पार्टी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या होता है, बाबा ने कहा गणेश पूजा होती है। और गणेश अर्थात विघ्न विनाशक, गणेश अर्थात चैलेंज करने वाले, गणेश अर्थात अपनी इस महानता को विश्व के सामने प्रख्यात करने वाले, वो है गणेश। और सबसे बड़ी महानता है विघ्न विनाशक की महानता। कोई भी विघ्न हमारे सामने ठहर नहीं सकता। अपने इस स्वमान में स्थित हो जाओ कि मैं कौन हूं, गणेश हूं। एक दंत, एक दंत कहा जाता है उसे, क्यों? दांत उसके दो है पर एक टूटा हुआ है। एक दंत क्यों कहा जाता है? दृढ़ता की शक्ति, वो तो दूसरी बात होगी। एक दंत क्यों कहा जाता है? हाँ, एक संकल्प, वो सब ठीक है, पर एक दंत क्यों कहा जाता है? जब व्यास जी ने रामायण लिखना था तो राइटर के रूप में किसको लिया था? गणेश को। पर गणेश ने भी अपनी शर्त रख दी कि फटाफट बोलना तुम, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं कहीं। तो व्यास जी ने भी कह दिया कि मैं तो बोलूंगा, पर तुम लिखने से पहले हर बार सोचना मैं जो लिख रहा हूं उसका अर्थ समझ कर ही लिखना। तो व्यास जी अपना चालू हो जाते हैं और बीच बीच में ऐसा कठिन श्लोक डाल देते हैं कि 10 मिनट वो सोचते रहता है, तब तक ही आराम करते हैं। पर इतना फास्ट लिखा, इतना फास्ट लिखा कि उसकी कलम ही टूट गई गणेश जी की, क्योंकि फास्ट लिखेंगे तो कलम तो टूटेगी ना। तो उन्होंने अपना ही दांत तोड़ा और फिर उसको डुबो डुबो के, इंक में डुबो डुबो के लिखा। तब से उनका आधा एक दांत आधा है, एक दंत वक्रतुंड महाकाय। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां, रमणीक कहानियां शास्त्रों में बैठ के किसने लिखी? किसने लिखी? आपने ही लिखी। तो क्या कहा? महाराष्ट्र अर्थात महान आत्माएं, महान राष्ट्र, महाराष्ट्र अर्थात गणेश। तो हम सब कौन है? गणेश, गणपति। भारत में 5 मुख्य देवताओं की पूजा होती है, पंच देवता। विष्णु, विष्णु को मानने वालों को वैष्णव कहा जाता है। शिव, शिव को मानने वालों को शैव कहा जाता है। शक्ति की पूजा, शक्ति को मानने वाले को शाक्त कहा जाता है। और गणपति को मानने वाले को गणपत्य कहा जाता है। और 5वां है सूर्य की पूजा। ये पंच देवताओं की भारत में सबसे अधिक पूजा है। तो हम वो है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। हम वो है जो भक्तों के विघ्नों को दूर करने वाले हैं। हम वो नहीं है जिनका अपना जीवन विघ्नों में घिरा हुआ है। हम वो है जो दूसरों के जीवन में आने वाले विघ्नों का नाश करे। एक है विघ्न विनाशक, अर्थात विघ्न आया और उसका विनाश करना। दूसरा है विघ्न हर्ता, विघ्नों को दूर करने वाला। एक है विघ्न जीत, विघ्नों को ही जीत लिया, विघ्न आना ही बंद। विघ्न हर्ता, विघ्न जीत, विघ्न विनाशक, ये सब अलग अलग टाइटल्स है। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में जो कुछ है सब तुम्हारा यहां का किया धरा है, तुम ही करता धरता हो। तुम्हारे ही ऐसे श्रेष्ठ कर्म थे, उसके आधार से भक्तों ने बैठकर ऐसी कहानियां बनाई है कि वो ये कर देता है, वो कर देता है, ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है, चमत्कारी कार्य कर देता है। तो हम सब कौन है? सबसे पहला स्वमान हम गणेश है, गणपति है, प्रथमेश है, विघ्नों का शमन नाश करने वाले हैं। उसके बाद में दूसरा ग्रुप है यूपी। यूपी किसके लिए प्रसिद्ध है? नदिया, तीर्थ, पंडे और महामंडलेश्वर और जगतगुरु और गन्ने के लिए और यूपी किसके लिए, यूपी से कौन है? हाँ यूपी वाले हैं पीछे, किस लिए प्रसिद्ध है आपका यूपी? वो हो गया, नदिया तो हो गई, और महामंडलेश्वर पंडे, और कुंभ और हरिद्वार। तो बाबा ने कहा है वो लोग क्या है, वो हरिद्वार नहीं है, तुम हरि के द्वार का रास्ता बताने वाले हो, तुम ये यहां नहीं है, संदेशी वाले है पार्टियों में, तुम क्या हो, हरि का द्वार बताने वाले हो, तुम भगवान से मिलन मनाने वाले हो, तुम सच्चे सच्चे सेवाधारी हो, तुम सच्चे सच्चे पंडे हो, सच्चे सच्चे गाइड हो। तो हम सब कौन है? गाइड। गाइड अर्थात जो दूसरों को रास्ता दिखाए। सोचो यदि कोई टूरिस्ट माउंट आबू में आ जाए और वो जो गाइड है वो गाइड से पूछे कि यहां पर कौन कौन से अच्छे दर्शनीय स्थल है, वो कहेगा दो मुझे याद है बाकी मुझे याद नहीं आ रहे, तो क्या कहेंगे ऐसे पंडे को? वो कहेगा कि हम यहां पहुंच गए पर यहां से अब कहां जाना वो आगे मुझे पता नहीं। वो कहेंगे तुम पंडे हो या क्या हो, तुम गाइड हो ना, तो तू गाइड को सब पता चलना चाहिए। गाइड अर्थात जिसके पास सारी जानकारी हो, गाइड अर्थात जो गाइड कर सके, गाइड अर्थात जिसे हर चीज का ऐतिहासिक महत्व पता हो। वो यहां अगर ओम शांति भवन भी लेके आए तो उसे पता होना चाहिए ये ओम शांति भवन कब निर्माण हुआ, क्या इसका महत्व है। दिलवाड़ा लेके जाए तो दिलवाड़ा मंदिर कब निर्माण हुआ, अनादरा लेके जाए तो वो जो गणेश दिख रहा है वो उसको गणेश पॉइंट क्यों कहते हैं, उसे सारी जानकारी होनी चाहिए। तो गाइड अर्थात नॉलेजफुल, गाइड अर्थात क्या होना चाहिए, नॉलेजफुल। ऐसा नहीं कि गाइड हम है और हम ही भटक गए, हमको ये रास्ता पता नहीं। गाइड अर्थात जिसे हर रास्ते की जानकारी है, हर शॉर्टकट्स हर पगडंडी को वो जानता है। गाइड अर्थात उसको पूरा पता है इस माउंट आबू में कितने दर्शनीय स्थल है, उनका इतिहास क्या है, यहां पहले कौन राज्य करता था, अंग्रेजों से पहले यहां क्या था, यहां के प्रवेश द्वार कौन कौन से थे, सामने का द्वार पीछे का द्वार सब कुछ पता चाहिए। तो और हम तो स्पिरिचुअल गाइड है, तो स्पिरिचुअल गाइड को तो फुल नॉलेज चाहिए। अर्थात 69 से लेकर तो आशीष भाई कहां तक की अव्यक्तवाणी है, अब तक की सारी अव्यक्तवाणी है। फिर ये मत कहना कि हमको तो पता ही नहीं, ये कैसे गाइड हो कि तुमको पता ही नहीं। हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास हो, हर प्रश्न का उत्तर, वो है गाइड। तो गाइड का सबसे मुख्य क्वालिटी क्या है, रास्तों की जानकारी, स्थानों की जानकारी, इतिहास की जानकारी, ज्योग्राफी की जानकारी, भूगोल उसे पता रहना चाहिए। और गाइड जो होगा वो निर्भय होना चाहिए, नहीं तो गाइड कहे कि चलो यहां से, अरे भालू आ गया भागो भागो। गाइड निर्भय चाहिए, जो दूसरों को आथत दे, जो दूसरों को भी थोड़ा सा उनकी रक्षा भी कर सके, ऐसा चाहिए गाइड। जैसे एक गाइड कुछ टूरिस्ट को घुमाते रहता है और वो टूरिस्ट बड़े आश्चर्य से उसकी बातें सुनते हैं, और फिर जंगल से जब गुजरते रहते तो टूरिस्ट वो सैनानी पूछते हैं उसको, क्या कभी आपका शेर से सामना हुआ इधर? वो कहता है शेर एकदम, एक बार तो ऐसा हुआ बिल्कुल आंखों के सामने, बिल्कुल हम दोनों आमने सामने आ गए, तो सब लोग पूछते फिर क्या हुआ? वो फिर क्या होना था, मैंने उसकी आंखों में देखा, उसने मेरी आंखों में देखा, वो कहते फिर क्या हुआ और क्या होना था, वो सामने आया मैं भी सामने गया फिर क्या हुआ, तो फिर क्या होना था, मैं उस पिंजड़े से हटके बाहर दूसरे पिंजड़े की ओर चला गया, वो प्राणी संग्रहालय था ना, वो पिंजड़े के अंदर था वो सामने सामने आया तो मैं वहां से हटके दूसरे पिंजड़े में चला गया दूसरा जानवर देखने, और क्या तो गाइड अर्थात निर्भय, गाइड अर्थात नॉलेजफुल, गाइड अर्थात जो भटक गए हैं उनको राह दिखाने वाला। वो तो स्थूल, ये है सूक्ष्म, ये है आध्यात्मिक, ये है स्पिरिचुअल पारलौकिक। जो जीवन की राह में भटक गए हैं उनको राह दिखाने वाला, जो जीवन में सुख शांति से भटक गए हैं दूर हो गए उनको वापस ठिकाना देने वाला, वो है गाइड। तो यदि हमारे पास कोई आए तो उसे हम सच्चा जीवन का रास्ता दिखा सके। स्थूल रास्ता दिखाने वाले तो बहुत है, परंतु जीवन का रास्ता। एक गाइड जा रहा होता है जंगल से और वहां शेर के पंजे के निशान दिखते हैं, तो सब पूछते हैं ये क्या है ये क्या है। वो कहता है शेर के पंजे के निशान। वो कहते हैं क्या हम इस पर रिसर्च करें। वो कहते हैं हां बिल्कुल, मैं वो चालू कहां से हुआ वहां पर रिसर्च करता हूं, तुम जहां वो जा रहे हैं वहां रिसर्च करो। जहां पंजे जिस ओर जा रहे तुम उधर जाओ, मैं पीछे से जाता हूं जहां से वो चालू हुआ, तो हम दोनों रिसर्च करेंगे। तो गाइड अर्थात जिसके पास सारी जानकारी है, प्रश्न चित्त नहीं है, वो प्रसन्न चित्त है। और गाइड का एक काम यह भी होता है, बड़ा एंटरटेन करता है सबको। ऐसा बिल्कुल डल गाइड रहा तो कौन जाएगा उसके पास। जो बड़ा मनोरंजन करता है उसके पास जो आते हैं उनका, तो वो है गाइड। तो यूपी ग्रुप से क्या कहा बाबा ने, वहां पर नदियां ज्यादा है, वहां तीर्थ ज्यादा है, वहां जगत गुरु ज्यादा है, वहां शंख, वहां पर महामंडलेश्वर ज्यादा है, और वहां की विशेषता हरिद्वार है, हरि का द्वार। तुम हरि के द्वार का रास्ता बताने वाले हो, तुम ऐसे रूहानी पंडे हो, तुम ऐसे स्पिरिचुअल गाइड हो। तो ये दूसरी बात। तीसरा था कर्नाटक। कर्नाटक की विशेषता चंद्रशेखर भाई जी, कर्नाटक की क्या विशेषता है? मैसूर, मैसूर को याद किया बाबा ने। एक है चंदन और दूसरा है गार्डन। चंदन क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है। और चंदन क्या करता है? खुशबू देता है। और चंदन क्या करता है? चंदन का क्या करते हैं, क्यों लगाते हैं टीका चंदन का? ठंडक, ठंडक। हाँ और क्या? चंदन की माला, चंदन की लकड़ी, चंदन की सम्मान के लिए। तो चंदन की चोरी भी कर लेते हैं। सैंडलवुड की क्या वो वीरप्पम तो सैंडलवुड, तो संदल, चंदन, अलग अलग नाम है। और दूसरा है रूहानी गुलाब। तो ये दोनों क्या करेंगे? खुशबू फैलाएंगे विश्व में। गुलाब की खुशबू वहां जाती है जहां पर हवाएं हो, पर एक दिव्य गुण युक्त व्यक्ति की खुशबू चारों ओर जाती है, उसका हवा से कोई संबंध नहीं है। ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहीं कहा है कि गुलाब की खुशबू केवल वहीं जाती है सुगंध की जहां हवाएं लेके जाए, परंतु जो वर्चुअस है, जो दिव्य गुणधारी है, जो धार्मिक व्यक्ति है, जिसने अध्यात्म को जो जी रहा है, जिसके जीवन में अध्यात्म है, उसकी खुशबू चारों दिशाओं में, चारों ओर दसों दसों दिशाओं की तरफ जाती है। तो चंदन और दूसरा है रूहानी गुलाब। तो विश्व को गार्डन बनाना है और अपनी खुशबू चंदन के समान सारे विश्व में फैलाना है। तो चंदन समान खुशबूदार अर्थात प्यूरिटी, पवित्रता की खुशबू है। जरा भी अपवित्र संकल्प नहीं, ना भाव में, ना भावनाओं में, ना संकल्प में, ना स्वप्न में, ना स्मृतियां। विकारी ख्यालात खत्म कर दो, चेक करो। कल परसों की मुरली थी कि अपने आप को देखो, कोई खराब काम तो नहीं करते, कोई विकारी ख्यालात तो नहीं आते। विचार इतने शुद्ध हो जाए, इतने प्योर हो जाए, इतने ब्रह्मचर्य युक्त हो जाए, इतना ब्रह्माचारी आचरण हो जाए, ऐसी प्यूरिटी की, ऐसी पवित्रता की संपूर्ण धारणा जहां होगी वहां आत्मा से खुशबू फैलेगी, नहीं तो नहीं। एक राजा अपनी पूरी सेना के साथ कहीं गुजर रहा होता है तो देखता है कि एक बहुत गरीब किसान है बेचारा, जिसके पास कुछ भी नहीं है। वो सोचता है इसकी मुझे मदद करनी चाहिए और अपने मंत्रियों से कहता है कि हमारा जो एक चंदन का बगीचा है, कुछ एकड़ जमीन है, वो इस गरीब किसान को दे दो। दे देता है मंत्री एक कुछ एकड़ जमीन जिसमें चंदन के वृक्ष होते, उस गरीब किसान को दे देते हैं। कुछ समय के बाद कुछ मास के बाद जब राजा उसी रास्ते से फिर गुजरता है, देखता है यहां चंदन के वृक्ष कहां गए, एक ही बचा है। वो पूछता है अरे तुमने किया क्या? वो कहता है करना क्या था, मैं तो किसान हूं और वैसे भी खेत में कुछ है नहीं, तो इन वृक्षों को मैंने काटा, इनको जलाया और जो कोयला आया उन कोयले को जाकर बेचा, ये काम किया उसने। एक ही बचा था, वो भी गीला था इसलिए जला नहीं पाया, उसको बेचने गया तो उसको इतनी कीमत मिल गई, इतनी कीमत मिल गई, और तब उसे पता चला कि जिसको वो जला रहा था वो चंदन का वृक्ष था। वहां चंदन का वृक्ष मिला और समय बर्बाद हुआ कोयले बेचने में। हमारा समय किस में बर्बाद हो रहा है? कोयले बेचने में। और चंदन का वृक्ष मिला था, बाबा ने कहा मिला नहीं था, तुम स्वयं ही चंदन हो, तुम स्वयं ही चंदन हो और तुम्हारी खुशबू फैल रही है, तो अपना टाइम कहीं कोयला बेचने में तो नहीं जा रहा है। ये अपने आप को देखना है। तो ये थी तीसरा ग्रुप। उसके बाद था चौथा, विदेशी। विदेशी यूके। उसमें दो चीजें कही, एक तो बड़ा जोर से अटैच भी हो जाते और बड़ा जोर से डिटैच भी हो जाते। अटैच ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे कि बस। पर उनकी ये विशेषता बाबा को अच्छी लगी, बाबा खुश है। क्यों? क्योंकि डिटैच भी हो जाते हैं जोर से। अटैच भी हो जाना, डिटैच भी हो जाना। अटैच पहले हो गए थे दुनिया से, अभी डिटैच हो गए इस दुनिया से, उस दुनिया से। तो और एक दूसरी विशेषता बताई उनकी, होस्ट और गेस्ट। ये उनकी चाल है, ये बाबा ने व्यंग कसा है शायद। ये विदेशियों की चाल है, क्या बनकर आते हैं? गेस्ट बनकर आते हैं और होस्ट बनकर रह जाते हैं। तो ये भी कहा, भारत ही नहीं विश्व के सभी देशों में। हाँ, और जाते समय क्या करके जाते? डिवाइड, लड़ते रहो। तो बाबा ने कहा ये उनकी चाल है। गेस्ट बनकर बाबा पॉजिटिव वे से कह रहा है, पर व्यंग है उसमें। ये उनकी चाल है। और एक तीसरी बात कही कि ऊंची ऊंची दीवारों को लांग कर यहां आ गए। इसलिए हरेक की अपनी अपनी विशेषता, विदेशियों की अपनी विशेषता, भारत वालों की अपनी विशेषता। तो उनकी विशेषता है न्यारापन और प्यारापन। पहले बहुत ज्यादा प्यारा अटैच थे, अभी एकदम न्यारे हो गए। ऐसे न्यारे हो गए जैसे कोई लेना देना ही नहीं उस पुराने जीवन से। वो पुराना नारकीय जीवन समाप्त हुआ, अभी एक नया जीवन, नव ब्राह्मण जीवन। तो ये विदेशियों से मुलाकात। उसके बाद में पंजाब से मुलाकात। उसमें क्या कहा पंजाब को? क्या कहा बाबा ने? नहीं, शेर तो इसमें मुरली में नहीं कहा। पंजाब के लिए क्या कहा? पंजाब के लिए क्या कहा? दंगे अभी हुए नहीं है, दंगे अक्टूबर में हुए थे, मुरली अप्रैल की है साल 84। हाँ, तुम बाप के बनना अर्थात सबके बनना। और एक जगह ये भी कहा कि बाप के बनना अर्थात और किसी के भी नहीं, केवल बाप से, और बाप के अलावा और किसी से प्यार क्यों करे? एक बाप के हो अर्थात सबके बन गए। ये भी कहा, ना हिंदू ना मुस्लिम ना कोई और धर्म के नहीं हो, एक बाप के अर्थात सारी दुनिया के हो। और यहां एक दूसरा उदाहरण दिया बाबा ने, बिल्ली के पुंगरे। बिल्ली के पुंगरे क्या रहे? सेफ रहे। यदि योग युक्त होंगे तो सेफ रहेंगे, यदि योग युक्त नहीं तो सेफ नहीं। तो बिल्ली के पुंगरों को याद किया, अर्थात जिनका बाबा से गहरा कनेक्शन है आंतरिक, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, वो कैसे रहेंगे? सेफ रहेंगे, उनकी सुरक्षा होगी और मदद कहीं ना कहीं से आएगी। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कहीं ना कहीं से सूक्ष्म में मदद आ जाएगी, भगवान उनकी रक्षा करेगा हर समय। तो पंजाब के लिए क्या क्या कहा? एक बाप के बनना अर्थात सबके बन जाना। और फिर यहां पर बाबा ने एक और उदाहरण दिया है पार्टीशन का। कि यज्ञ के आदि काल में क्या कहते थे, इनका किसी से कोई कनेक्शन नहीं, तो बाप का बनना अर्थात और किसी का नहीं बन सकते, तो बाप का बनना अर्थात और किसी से प्यार नहीं कर सकते, केवल एक ही से प्यार, और किसी से कोई कनेक्शन नहीं, और किसी से कोई लेना देना नहीं, और किसी से मोहब्बत, इश्क, फंसना, पर्सनल संबंध, रिलेशनशिप्स, ये सब कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात पब्लिक लाइफ है, ब्राह्मण लाइफ अर्थात पब्लिक लाइफ, इसमें कुछ छिपाने जैसा नहीं है, ये मेरा पर्सनल है। किससे बात कर रहे थे? नहीं नहीं, मेरा वो अपना थोड़ा व्यक्तिगत बातें चालू थी। कौन सी व्यक्तिगत? काहे की बातें चालू थी? तो ओपन लाइफ, ओपन बुक की तरह ये जीवन है। इसमें जो कुछ संबंध है वो केवल सेवा अर्थ संबंध है। किसी से व्यर्थ के संबंध जोड़ देना, कोई व्यर्थ के संबंध को खींचते रहना, किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति से संबंध जोड़ के रखना, और वो संबंध भाई भाई का नहीं है, वो कुछ और है, अर्थात वहां गड़बड़ है। जो संबंध कहते हैं हमको पता नहीं, हम दोनों का संबंध क्या नाम दे इसको, क्या नाम दे मतलब माया। कहते हैं ना, हमको समझ भी नहीं आ रहा ये कौन सा संबंध है, मतलब तो मतलब हमारा सब अच्छा है, प्रेम भी है, सेवा भी है, आसक्ति भी है, कभी झगड़ते भी है, एक दूसरों को खरोचते भी है, तो प्यार भी करते। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, क्या है समझ में नहीं आ रहा, अर्थात माया, जिसका नाम नहीं दिया जा सक रहा है, अर्थात जो अनामिका है, अर्थात माया। क्योंकि जहां स्पष्ट संबंध है वहां कोई डर नहीं, वहां नाम देने की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही संबंध है, भाई भाई बस, नए मत जोड़ते बैठना इधर, नहीं तो फंसा देंगे, फंस जाएंगे उसमें। तो ये कौन सा था? पंजाब वाले। तो यहां पर एक उदाहरण दिया पार्टीशन का, और दूसरा उदाहरण दिया बिल्ली के पुंगरों का, पुंगरे जो कि सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो जो योग युक्त होंगे वो सुरक्षित रहेंगे, उनको कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी ही। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक उदाहरण है कि वो यात्रा कर रहे थे ट्रेन से, दो दिन से भूखे थे विदेश जाने से पहले, तो एक रईस आदमी उनके सामने आके बैठ जाता है, और अपना सारा ट्रेन में कैसे निकालते हैं ना खाने पीने की चीजें, और खाना चालू करता है, और उनको ताने कसते रहता है, तुम इतने जवान हो, काम करना चाहिए, अगर तुमने काम किया होता ना मेरे जैसा, तुमको ऐसा सारा पकवान मिला होता, ये तुम बहाने करते हो, जवान लोग सन्यासी बन जाते हो, और काम तो कुछ करना नहीं और भीख मांगते रहो, ये है तुम्हारा अध्यात्म, ऐसे बहुत सुनाता है जलीकटी। तो वो कुछ नहीं कहते, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि वो तो भारत भ्रमण पर है, भारत में क्या हो रहा है वो देखना चाहते थे। तो स्टेशन आता है, और जैसे स्टेशन आता है तो उतरते हैं, तो देखते एक व्यक्ति खड़ा है उनको लेने के लिए, वो अपरिचित है, वो कहता है चलो स्वामी जी मेरे पास चलिए, और सामने लेके जाता है, वहां चेयर भी रखी होती है, ये सत्य घटना बताई गई है, और वो उनको अपने घर से सारा भोजन लेके आता है और उनको सब खिलाता है। तो वो कहता है तुमको कैसे पता चला कि मुझे देना है? वो कहता है मैं जी राम जी का भक्त हूं। और आज रात को जब मैं सो रहा था, मुझे एक स्वप्न आया कि एक भगवे वस्त्रधारी एक स्वामी जी आएंगे, उनको तुम अगर भोजन खिलाओगे तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, इसलिए मैं यहां आ गया। तो विवेकानंद ने अपने विदेश के भाषण में फिर बताया कि आई थैंक्ड गॉड आउट ऑफ दैट अर्नेस्टनेस, कि कैसे भगवान मदद करता है, जो उसके भगत होंगे, जो उसको याद करने वाले होंगे, जो उसके सच्चे होंगे, उनको वो कहीं ना कहीं से मदद अवश्य भेज देगा। तो ये था विदेशियों का ग्रुप। उसके बाद था पार्टी नंबर वन, दो पार्टियों से मुलाकात है ना, घंटे वाला, वो आरती जब पूरी होती है तो जोर जोर से घंटे बजाते हैं। वो है, वो भी एक बात है। तो अभी समाप्ति का समय है, तो जोर से बजनी चाहिए, 84 घंटे अर्थात चारों घंटे, चारों तरफ देवियां। फिर उसके बाद में छठवां ग्रुप है पार्टी नंबर वन, क्या कहा उससे, क्या कहा, ये ब्राह्मण जीवन का वंडर है, कौन सा, जो तुम देखते हो अपनी पूजा हो रही है। यहां बाबा ने बहुत सारे सम्मान दिए, कौन कौन से, तुम हीरो हीरोइन एक्टर हो, तुम कौन हो, हीरो हीरोइन एक्टर हो, और क्या सम्मान दिए, तुम भाग बेहद की खुशी के मालिक हो, यह तुम्हारा ऑक्यूपेशन है, यह तुम्हारा ऑक्यूपेशन है, और क्या कहा, और एक सम्मान है कोई तो, और कौन सा सम्मान, पार्टी नंबर वन से हीरो हीरोइन एक्टर, उसके नीचे ही और एक है, खुशी होके खान के, वो तो लास्ट में, बीच में और एक है, और एक सम्मान है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम विशेष हो, विशेषता हो, हाँ अवतरित हुए हो, और एक विश, और एक सम्मान है वहां पर, हीरो हीरोइन से नीचे, विशेष पाठधारी हो, हीरो हीरोइन हो, अवतरित हो, तो यहां पर ढेर सारे सम्मान दिए। फिर पार्टी नंबर टू, पार्टी नंबर टू से क्या कहा, ब्राह्मण क्या करते हैं, कथा करते हैं, तुम कौन सी कथा करते हो, तुम कथा नहीं करते हो, तुम सत्य बाप का सत्य परिचय देते हो, कितनी अच्छी बात कही, क्योंकि सत्य बाप के बारे में किसी को पता ही नहीं है, उसका क्या परिचय किसी को नहीं पता, तुम ऐसे सत्य बाप का सत्य परिचय देते हो, अर्थात पहले हमें उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि जिसका परिचय देना है उसकी पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, और कोई कुछ पूछ दे और हमको पता ना हो तो कहेंगे तुम उसको जानते ही नहीं, और एक व्यक्ति को जानने की विधि क्या है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को जानने की विधि क्या है, पहले उसके बारे में सारा पढ़ना, वो सब, पर सबसे ज्यादा कौन जानेगा, जो उसके साथ रहता है जो उसके साथ रहता है उसको सबसे ज्यादा पता होता है, तो यदि भगवान के बारे में सब कुछ जानना हो तो क्या करना पड़ेगा, भगवान के साथ रहना पड़ेगा, क्या हम उसके साथ रहते हैं, हाँ कौड़ी से हीरे, और एक है, और एक है, और एक है, कौड़ी से हीरे बना दिया, कौड़ी से हाँ संदेशी हो, हाँ ये है, तुम कौन हो, सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी संदेशी हो, संदेश सुनाने वाले संदेशी हो, ये फर्स्ट पार्टी में कहा, सेकंड पार्टी में अभी हम थे, तो सत्य बाप का सत्य परिचय, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जो कोर्स कराने वाले हैं और जो सेंटरों पर रहते हो, सेवन डेज कोर्स कराते हैं, ये जो गॉड है इसको जरा ठीक से समझना है, ये जो गॉड है ना उसको जरा ढंग से ठीक से सलीके से समझना है, वो है क्या, वो काम क्या करता है, नेचर ऑफ गॉड क्या है, माइंड ऑफ गॉड क्या है, संस्कार ऑफ गॉड क्या है, स्वभाव क्या है भगवान का, क्या स्वभाव है उसका उसके साथ रहना पड़ेगा तो उसके स्वभाव का पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा, उसके बहुत जो जितना नजदीक है उसके, उसको सबसे ज्यादा जानकारी है उसकी, जो जिससे उतना दूर है वो क्या बताएगा, वो खाली रटी रटाई बातें बताएगा, उसका नाम ये, रहता यहां है, उसकी ये हॉबीज है, ये खाना पीना उसको अच्छा लगता है, उसका ये काम है, ये सब पता है, ऐसा नहीं, वो करता क्या है, दिन भर बैठ के करता क्या है, अब क्या कर रहा है पिछले दो साल से, ऊपर बैठ के साइलेंस में मौन व्रत धारण कर रखा है, उसकी क्या प्लानिंग चल रही है, मन में क्या है स्लाइट मोड तो सब कुछ उसके विषय में जानना, यह है सत्य। और दूसरी बात यहां पर कही, वो कौन सी, ब्राह्मण क्या है, चोटी है, चोटी अर्थात ऊंचे, और जब भी समस्या आए तो क्या हो जाओ, ऊंचा हो जाओ, तो वो समस्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जैसे सबसे बेस्ट उदाहरण और जो निरंतर याद रखना है, ये उदाहरण छोटा सा उदाहरण है पर बहुत काम का है, अकबर पूछता है बिरबल से या अपने सभासदों से, ये लाइन खींच दी है, बिना इसको स्पर्श किए इसको छोटा कर दो, ये लाइन खींची है, बिना इसको हाथ लगाए इसको छोटा कर दो, कोई नहीं कर पाता है, बिरबल आता है और एक बड़ी लाइन खींच देता है, अपने आप वो छोटी हो जाती है, परिस्थिति को बिना हाथ लगाए बिना टच किए क्या कर देना है, अपनी स्थिति को ऊंचे उठा दो, स्थिति ऊपर हो गई तो परिस्थिति अपने आप नीचे हो जाएगी, परिस्थिति को हमने कुछ नहीं किया, वो वैसी ही है, पर यहां जब नीचे से देखते हैं तो बड़ी लगती है, अब ऊपर चले जाओ तो ये छोटी हो गई। तो हम क्यों नीचे रहे, हम ऊपर जाए, ऊपर बैठ के देखो परिस्थिति को, तो वो छोटी हो जाएगी। बड़ी लाइन खींच दो, एक परिस्थिति को बिना हाथ लगाए ऊपर चले जाओ। तो ब्राह्मण अर्थात चोटी, चोटी अर्थात समस्या के अधीन होने वाले नहीं, चोटी अर्थात ऊंची स्थिति में रहने वाले। तो ये सेवेंथ पार्टी थी। तो ऐसी ये सात पार्टियां थी, मुख्य मुरली और वो जो मृत्यु समाचार, वो बाद में शाम को या कल लेंगे। तो सात बातें कौन कौन सी थी, सबसे पहले महाराष्ट्र अर्थात मैं गणेश हूं, विघ्न विनाशक हूं, विघ्नहर्ता हूं, विघ्न जीत हूं, विघ्न नाशक हूं, विघ्न मुक्त हूं। यह भी एक अवस्था है, तीन अवस्थाओं में, एक विघ्न मुक्त, एक विघ्न जीत और एक विघ्न नाश। सबसे ऊंची कौन सी है तीनों में से? एक है विघ्न मुक्त, विघ्न है ही नहीं, ये सबसे ऊंची। फिर है विघ्न जीत, विघ्नों को जीत लिया, और उससे नीचे विघ्न आया और उसका नाश किया, तो विघ्न विनाशक। तो ये तीन, गणेश में भी तीन प्रकार के गणेश, एक फीमेल गणेश भी होता है, वो पता नहीं क्या है, उसकी भी कहीं पूजा होती है, हाँ स्त्री गणेश नए नए बनाते रहते हैं ना, हाथ में भक्तों के, जैसा चाहे अपने भगवान को बनाते तो पहला है हम गणेश है, दूसरा बताया हम गाइड है, पंडा है, कोच है, प्रशिक्षण देने वाले है, ट्रेनर है, ट्रेनिंग देने वाले है, टीचर है, ट्यूटर है, दूसरों को मार्ग बताने वाले है, पथ प्रदर्शक है, पथ प्रदर्शक हम है, रहनुमा है, जो राह दिखाता है वो रहनुमा हम है। तो हम इस तरह से दूसरों को, लाइट बेरर, टॉर्च बेरर, पाइनियर, जो दूसरों को राह बताए वो है। तो सारी जानकारी होनी चाहिए, टूरिस्ट बुद्धू वाला टूरिस्ट ने गाइड नहीं बनना है, टूरिस्ट प्रश्न पूछे और हम कहें हमको पता ही नहीं क्या है, पूछ के बताता हूं, ये सब नहीं चाहिए, सब जानकारी हासिल करो। हमारी बड़ी दीदी, अब तुम ही बड़ी दीदी हो, कब तक छोटी दीदी रहोगी? तीसरी बात बताई, चंदन, तो क्या बनना है, चंदन का वृक्ष या चंदन बनकर खुशबू फैलानी है प्यूरिटी की, और गुरुहानी गुलाब बनना है। उसके बाद में पंजाब अर्थात बाप को जान लिया अर्थात सबने सब बाप के हो गए अर्थात सबके हो गए, और बाप के हो गए अर्थात और किसी के नहीं, केवल एक बाप से ही प्यार और किसी से नहीं, और बिल्ली के पुंगरे जो है वो सेफ रहेंगे, और जैसे पार्टीशन में कहते थे इनका किसी और से कनेक्शन नहीं, ये अल्लाह लोक है, हमारा भी किसी से कनेक्शन नहीं संसार से, किसी से पर्सनल अटैचमेंट नहीं, आसक्ति नहीं, कोई डर नहीं अंदर, हाँ डरो नहीं घबराओ नहीं आगे बढ़ते जाओ, ये भी कहा डरो नहीं घबराओ नहीं आगे बढ़ते जाओ, ज्ञान में आगे बढ़ते जाओ, धारणाओं में आगे बढ़ते जाओ, पढ़ाई में आगे बढ़ते जाओ, तो आगे बढ़ते जाओ। उसके बाद में फिर अगला ग्रुप है यूके, विदेश का ग्रुप, उसको क्या कहा, अटैच भी बहुत होते तो डिटैच भी बहुत होते, अभी अटैच बहुत हो गए अभी डिटैच हो जाओ, जो इंटेंसिटी से तीव्रता से अटैच हो गए थे लोगों से, अब उतने इंटेंसिटी से अटैचमेंट सारी उखाड़ कर फेंक दो, निर्मोह। और दूसरी बात, आए थे गेस्ट बनकर और होस्ट बन गए, तो भगवान के दिल में भी गेस्ट बनकर जाना और होस्ट बन के रह जाना, उसके अंदर निकलना ही नहीं उसके। क्लेफ्ट ऑफ एजेस रॉक फॉर मी, लेट मी हाइड माइसेल्फ इन धी। बाइबल में एक जगह लिखा है, तुम वो चट्टान हो, क्लेफ्ट फॉर एजेस, जन्म जन्म के लिए चट्टान हो, हाइड फॉर मी, रॉक फॉर मी, मेरे लिए वो रॉक हो, लेट मी हाइड माई सेल्फ इन दी, हे प्रभु मुझे तुझ में छुप जाने दे, हे प्रभु मैं तुझ में छुप जाना चाहता हूं, मुझे अपने आप में छिपा ले, कोई देख ना पाए ऐसा तू छुपा ले, लेट मी हाइड माई सेल्फ इन दी। अगला यूके के बाद पार्टी नंबर नहीं, पंजाब हो गया, पंजाब पहले बोल दिया, फिर पार्टी नंबर एक, पार्टी नंबर एक में हम सब कौन है, हीरो हीरोइन, हम सब कौन है विशेष पाठधारी, हम सब कौन है संदेशी, हम सब कौन है हीरे तुल्य, हम सब कौन है अवतरित, हम सब कौन है खुशियों के खजाने के मालिक। तो ये पहली पार्टी। दूसरी पार्टी से हम ब्राह्मण चोटी है, ऊंचे है, ऊंची स्थिति में रहने वाले, परिस्थितियां नीचे रह जाए। एक संकल्प सूरज भाई जी हमेशा देते हैं, हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूं। कितना अच्छा संकल्प है, हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूं। यह परिस्थिति बहुत छोटी है, वो नीचे हम ऊपर, सिर पे मत बैठने देना उसको। परिस्थिति नीचे और हम ऊपर, हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूं, हर विघ्न से बड़ा मैं हूं, हर समस्या से बड़ा मैं हूं, हर कारण से बड़ा निवारण मैं हूं। तो ये एक, और फिर दूसरी बात थी यहां पर पार्टियों से मुलाकात में 84 घंटे की, दूसरी बात थी यहां पर, जो फर्स्ट बात थी हम सब कौन है, हीरो हीरोइन हो गया आ? नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म कुमार नहीं, यहां अभी तो बोला, अभी अभी बोला, चोटी के पहले हाँ, पंडे बिंडे कहां कहां से कई मत जोड़ो, परिचय देने वाले हैं, सत्य बाप का सत्य परिचय देने वाला है। तो ये 7 ग्रुप से बाबा मिले, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, पंजाब, यूके, देखो जिसकी जो जो विशेषता उससे मिलता है और उसको उसी रीति से खुश करता है। बाबा को कितनी जनरल नॉलेज भी कितना है, मैसूर, चंदन, पंडे, महाराष्ट्र पूरा उसका। इधर आता भी नहीं संसार में, स्वर्ग में प्रवेश नहीं करता और स्वर्ग की हर चीज के बारे में बताता है। और फिर कहता है मुझे कुछ पता नहीं, मैं जानी जान हार हूं, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे पूछो भी मत। पूरी एनसाइक्लोपीडिया है स्पिरिचुअल, सारी जानकारी, एक एक चीज की जानकारी है, छोटी छोटी जानकारी है उसके, छोटे छोटे गांवों के बारे में पता है उसको। पूरा अपना नॉलेज भरता होगा 2 युग में। तो ये ऐसी 7 बातें थी, तो इस मुरली को फिर से अच्छे से रिवाइज करनी है। ओम शांति।